भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 10 सृष्टि के विभाग। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने अंतर्धान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे हैं। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यावहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था, अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोकों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा जी कमल के कोष में प्रविष्ट हुए और चूंकि वह सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 विभागों में और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया। परिपक्व दिव्य ज्ञान में भगवान की अहेतुकी भक्ति के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष हैं, इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके नित्य काल का वर्णन करें जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्य काल के क्या लक्षण हैं? कृपा करके हमसे विस्तार से कहें। मैत्रेय ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के 3 गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में इसी तरह रहेगा। उस एक सृष्टि के अतिरिक्त जो गुणों की अन्योन्य क्रियाओं के फल स्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है, नौ प्रकार की अन्य सृष्टियां भी हैं। नित्य काल भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय तीन प्रकार का है। नौ सृष्टियों में से पहली सृष्टि महत्तत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता क्रिया शक्ति का सृजन। पांचवी सृष्टि सतो गुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, जिसका साथ समाहार मन है। छठी सृष्टि जीव के अज्ञानता पूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। उपर्युक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझसे उन ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजोगुण के अवतार हैं और सृष्टि के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है। सातवीं सृष्टि अचर प्राणियों की है, जो छह प्रकार के हैं। फूल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है। वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। आठवीं सृष्टि निम्नतर जीव योनियों की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में अशक्य होती हैं। हे शुद्धतम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारा सिंगा, सूकर, नील गाय, हिरण, मेंढा तथा ऊंट, ये सब दो खुरों वाले हैं। घोड़ा, खच्चर, गधा, गौध, चरब भैंसा तथा चवरी गाय, इन सबों में केवल एक खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो, जिनके पांच नाखून होते हैं। कुत्ता, सियार, भाग, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू, सयाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोसाप, गुह इत्यादि के पंजों में पांच नाखून होते हैं। वे पंच नख अर्थात पांच नाखूनों वाले पशु कहलाते हैं। कंक, गीद, बगुला, भाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। मनुष्य की सृष्टि क्रमानुसार नौमी है। यही केवल एक ही योनि जाति ऐसी है और अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य गण दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम तीन सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि दसवीं सृष्टि वैकृत सृष्टियां हैं, जो पूर्व वर्णित प्राकृतिक सृष्टियों से भिन्न हैं। कुमारों का प्राकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं। देवताओं की सृष्टि आठ प्रकार की है। देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराएं, यक्ष तथा राक्षस, सिद्ध, चारण तथा विद्याधर, भूत, प्रेत तथा पिशाच, किन्नर, अति मानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि, ये सब ब्रह्मांड के सत्रष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हैं। अब मैं मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। सत्रष्टा ब्रह्मा, जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि के विभाग नामक दसवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।